Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Eta Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Eta Gaura Hari Bol.
सावधान रहिए, थोड़ी नींद आ जाएगी, थोड़ा ऐसे वैसे हो गए तो पीछे आप जरा सावधान रहिएगा, जो भी कोने में बैठे हैं। ज्ञानांजन शलाकायां चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासा भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो अवश्य यहाँ ऊपर आने के लिए आप सबको कष्ट हुआ होगा, कोई तो हेलीकॉप्टर में बैठ के नहीं आए, सब लोग पैदल आए हैं और यहाँ ऊपर आके भी अभी हम सब धूप में बैठे हैं, ठंडी का समय तो है नहीं, फिर भी हम सब थोड़ा शरीर को कष्ट देकर यहाँ ऊपर क्यों आए हैं। वेलकम, हर बार बेंगलोर से इतने दूर यहाँ क्यों आए हैं, भगवान और उनके शुद्ध भक्तों की कृपा प्राप्त करने के लिए। हनुमान जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, श्री रामचंद्र के नित्य पार्षद हैं। जब हम राम का नाम सुनते हैं तो हनुमान भी स्मरण हम करते हैं, जहां राम है वहां हनुमान, जहां हनुमान है वहां राम। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में जब भक्ति के नौ अंगों की चर्चा करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, नौ प्रकार से ये नौ भावों से जो भक्ति की जाती है उसमें से एक है दास्यम। और श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि इन नौ तरीकों में से कोई भी किसी भी एक तरीके को अपनाने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, एक से अधिक भी हम कर सकते हैं, परंतु हर एक अंग में परिपूर्णता प्राप्त करके ऐसे कई भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली है। और दास्य सेवा में हनुमान जी का नाम सर्वप्रथम आता है। हनुमान जी सेवा के मूर्तिमान रूप हैं। अपने प्रभु के लिए किस प्रकार से कुछ भी त्यागने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, कोई भी असुविधा झेलने के लिए तैयार होना चाहिए, कोई भी कष्ट उठाने के लिए तैयार होना चाहिए, बल्कि आतुर होना चाहिए, ये हनुमान जी इन सारे भावनाओं के प्रतीक हैं। हनुमान जी सदैव तत्पर रहते हैं, हाथ जोड़कर प्रांजलि मुद्रा में खड़े रहते हैं भगवान के आदेश का पालन करने के लिए। बस थोड़ा ही इशारा हनुमान जी को चाहिए और भगवान की इच्छा पूर्ण कर देते हैं, बल्कि यहाँ तक कि वो भगवान की इच्छा का कभी अनुमान भी लगा लेते हैं कि भगवान ये चाहते हैं। ये अच्छा सेवक होता है जो पहले से अनुमान लगा के जान सकता है कि ये भगवान की क्या इच्छा है। हनुमान जी ने कितना कष्ट उठाया भगवान के लिए। जब सीता देवी को ढूंढने का समय आया तो सबसे पहले वो समुद्र पार करके छलांग मार के चले गए, जो स्वयं प्रभु रामचंद्र नहीं कर पाए वो उनके शुद्ध भक्त श्री हनुमान जी कर पाए। भगवान रामचंद्र को समुद्र पार करने के लिए पुल बनाना पड़ा, सेतु। हनुमान जी को कोई सेतु की आवश्यकता नहीं थी, सीधा छलांग मार के निकल पड़े, पहुंचे लंका। लेकिन छलांग मारने की शक्ति कहां से आई? भगवान से ही आई। वैसे भगवान चाहते हैं तो उनको कोई पुल की आवश्यकता नहीं है, परंतु वो मनुष्य लीला कर रहे थे इसलिए ये सारी लीला हुई। और फिर लंका में जाके उन्होंने बहुत कष्ट उठाया, वहां सबसे युद्ध किया, और उसके बाद में भी युद्ध के बाद प्रभु रामचंद्र जी की सेवा में हमेशा वो रहे। हनुमान जी इतने तत्पर रहते हैं भगवान की सेवा के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए इतनी तीव्र इच्छा उनके मन में है कि इससे एक सुंदर लीला है। हमने अब सब यहाँ हनुमान जी का दर्शन किया, कौन सा रंग हमने देखा हनुमान जी के ऊपर, सिंदूर का रंग लाल रंग है। वैसे जो ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं वो भी लाल वस्त्र पहनते हैं, और हनुमान जी तो अखंड ब्रह्मचारी हैं। बल्कि ब्रह्मचारियों को हनुमान जी के कृपा की याचना करनी चाहिए कि वो अच्छी तरह से ब्रह्मचारी रह पाए। हनुमान जी की कृपा के बिना ये संभव नहीं हो पाता है। हनुमान जी ने व्रत लिया था, मैं अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा। तो हुआ ये कि एक बार हनुमान जी ने सीता देवी से पूछा कि ये आपके बाल के बीच में यहाँ ये लाल क्या है, लाल लाल रंग क्या है? उन्होंने कहा ये तो सिंदूर है, ये सिंदूर क्या चीज है, आप क्यों पहनते हैं? बोले प्रभु रामचंद्र प्रसन्न होते हैं इसको देखकर। अच्छा, तो फिर हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि अच्छा इतना सा थोड़ा लाल लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो फिर मैं तो सारे शरीर के ऊपर लाल लगा दूंगा तो भगवान कितने प्रसन्न हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने सिंदूर लिया और अपने सारे शरीर पे सिंदूर लगा दिया, ऊपर से नीचे तक। ऐसा कोई भाग नहीं था शरीर का जिसमें सिंदूर नहीं लगा हुआ था। और फिर वो सबके सामने आए, भगवान राम के सामने आकर सोचने लगे कि भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। देखा, अरे हनुमान ये क्या है? और सभी लोग देखने लगे। फिर प्रभु रामचंद्र ने कहा कि ठीक है, अभी निकाल लो ये सब सिंदूर। लेकिन भगवान ने हनुमान जी का भाव स्वीकार किया कि हनुमान जी की ये कार्य करने के पीछे भावना क्या थी। तो उस लीला के बाद हनुमान जी की जहाँ भी मूर्तियाँ होती हैं, जहाँ भी उनके मंदिर होते हैं, लाल रंग से हम देखते हैं। अगर पत्थर भी हो, काले पत्थर का भी बना हुआ हो, लेकिन लाल सिंदूर का रंग लगा देते हैं। तो ये है हनुमान जी की भावना, सेवा की भावना, त्याग की भावना, निस्वार्थ सेवा। हनुमान जी के मन में केवल एक ही इच्छा है कि प्रभु रामचंद्र को कैसे प्रसन्न करें। कोई अपनी इच्छा, अपनी सुविधा, अपना सुख का कोई विचार नहीं है। ये है आदर्श भक्त। प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों में बार बार बताते हैं कि सच्चा भक्त वो होता है जो अपने सुविधा और असुविधा का विचार न करते हुए भगवान के और उनके भक्तों की सेवा करता है। तो हनुमान जी हमारे लिए प्रेरणा है, हमारे लिए आदर्श है कि कैसे हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। जिस स्थान में हम बैठे हैं, ऐसे कहा जाता है कि ये हनुमान जी का जन्म स्थान है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि उनका जन्म यहाँ कैसे हुआ। एक अप्सरा थी जिनका नाम था पुंजिका स्थली, और उनको एक बार एक ऋषि के द्वारा शाप मिला, और कंजर नाम के एक वानर राजा की पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ, और फिर पुत्री का नाम रखा गया अंजना। अंजना का विवाह हुआ एक वानर से जिनका नाम था केशरी, और केशरी पहले अक्सर मेरु पर्वत पर भी रहा करते थे। तो जब हम वानरों की बात करते हैं, हमें जानना चाहिए कि ये छोटे मोटे यहाँ लंगूर और छोटे छोटे बंदर की तरह नहीं है। ये वानर तो बहुत भीषण, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही तेजस्वी ऐसे व्यक्ति हैं। किम पुरुष लोक में भी निवास करते हैं। किम पुरुष, देखने से लगता है कि पुरुष जैसे, किस प्रकार के पुरुष हैं ये? किम पुरुष, लगता है दिखने में मनुष्य जैसे, लेकिन मनुष्य नहीं है। तो यहां पर अंजना देवी जब एक बार इधर जा रही थी, तो वायु भगवान, वायु देव के द्वारा हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी का जन्म जब यहाँ पर हुआ अंजना देवी के द्वारा, वो छोटे से बच्चे थे, और उन्होंने देखा जन्म लेने के दूसरे ही दिन सूर्योदय हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि ये सूर्योदय फल है, इसको खाना चाहिए। तो उन्होंने छलांग मार दी और बहुत ऊपर गए, ऊपर 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 उड़ते इतने पास में आए सूरज के, उनके पीछे पीछे वायुदेव जा रहे थे सूरज की किरणों से उनको रक्षा देने के लिए, क्योंकि वो वायु भी थे, पवन सुत। इसलिए हनुमान जी की सेवा करने के लिए वायुदेव अभी भी पवन देखिए कितनी पवन आ रही है, हनुमान जी को ठंडक देने के लिए अभी भी आते हैं यहाँ। तो ऊपर 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 गए, 3,000 योजन दूर, बहुत ही दूर गए, बल्कि सूरज तक पहुंच गए। और एक बार सूरज में पहुंचे, सूर्य देव की कृपा से वो जले नहीं तो कौन सूर्यदेव नाम ऐसे शरीर में जा सकता है। सूर्यदेव वहां पर अपने रथ में बैठे हुए थे, तो हनुमान जी को उन्होंने साथ में रथ में बिठाया, और वो भी सूरज में ऐसे बैठे रहे। परंतु कि सूर्य ग्रहण का समय आया, तो राहु वहां पास में आने लगा। आपको पता है कि ग्रहण के समय राहु और केतु आते हैं। तो राहु जब वहां पर पास में आया, तो हनुमान ने सोचा ये भी नया फल है कोई, इसको भी खाना चाहिए। तो छलांग मार दिया रथ से, और छलांग मारा तो राहु डर के मारे वापस भाग गया इंद्र के पास, और इंद्र से कहने लगा कि अरे ये क्या नया सिस्टम बना लिया आपने, मैं सोच रहा था कि जब ग्रहण के समय केवल मैं एक राहु होता हूँ, अभी आपने दूसरा राहु कहाँ से बना दिया। अब जैसे मैं ग्रहण के लिए गया सूर्य के पास, तो ये अचानक वहां से कूद पड़ा मेरे ऊपर। तो इंद्रदेव को बड़ा गुस्सा है, अरे दूसरा राहु, ये कौन नकली राहु आ गया, चलो देखते हैं। तो अपने ऐरावत हाथी के ऊपर सवार होकर इंद्रदेव निकल पड़े, और जैसे ही वो सूरज के पास आ रहे थे, उनको देखकर, ऐरावत और इंद्र को देखकर बाल हनुमान ने सोचा, अरे और भोजन, और छलांग मार दी। इस बार इंद्रदेव ने देखा कि अरे ये बहुत तेजी से मेरी ओर आक्रमण कर रहा है, ये बच्चा है, कौन है ये बच्चा। फिर अपना वज्र चला दिया, वज्र हनुमान को लग गया और ऊपर से फिर वो नीचे गिरे, और गिरे तो यहाँ पहाड़ के ऊपर गिरे, और यहाँ उनका हनु जो है वो लग गया, वो उसमें वो थोड़ा टूट गया, इसलिए बाद में उनका नाम हुआ हनुमत या हनुमान, उसकी हनु थोड़े टूट गया था। लेकिन जब ऐसा हो गया तो हनुमान के शरीर से ऐसे प्रतीत हुआ कि प्राण निकल गए हैं, और वायुदेव को बहुत गुस्सा आया, तो वायुदेव ने सारे प्राण खींच लिया। जब प्राण खींच लिया तो स्वर्ग लोक आदि तक भी सांस नहीं ले पा, सबका पेट सब कुछ नहीं कर पा, सारे जो भी शारीरिक क्रियाएं हैं संपन्न हो गई। सभी बड़े चिंतित ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, आपने वायु पुत्र के प्रति ऐसे कार्य किया तो वायुदेव का अपराध हुआ है, वायुदेव के पास आप सब कुछ जाना चाहिए। सभी लोग आए वायुदेव के पास, और ब्रह्मा जी ने कृपा करके उस बच्चे को पुनर्जीवित कर दिया, जागृत कर दिया, और देवताओं से कहा कि आप इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं वरदान दिया कि मैं ये आशीर्वाद इस बच्चे को देता हूँ कि क्योंकि ये देवताओं के कार्य हेतु यहाँ पर आया है और श्री राम की सेवा करेगा, इसलिए इसका पराजय युद्ध में कभी नहीं हो पाएगा, ये सबसे बड़ा वरदान मैं देता हूँ। और आगे चल के ये इस गति से चल पाएगा जैसे कि उसकी इच्छा है, जिस दिशा में वो जाना चाहे, जिस गति से जाना चाहे, वो उड़ पाएगा, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। और इंद्रदेव ने कहा, मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि जब चाहे वो अपने मृत्यु को बुलाए, नहीं चाहे तो जीता रहे। यमराज ने कहा कि इसे कोई रोग नहीं होगा और मेरे दंड से हमेशा ही मुक्त रहेगा। ऐसे हर एक देवता ने अपने अपने आशीर्वाद और वरदान देना शुरू कर दिया, और फिर हनुमान जी यहाँ इसी क्षेत्र में, किष्किंधा क्षेत्र में बड़े हो रहे थे। अब जन्म के एक दिन बाद ये उनकी शक्ति थी, जब आगे बढ़े तो हम समझ सकते हैं कि शक्ति कितनी बढ़ गई होगी, और वो भी साथ साथ अभी देवताओं ने सारे वरदान भी दे दिए थे, तो उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। ब्रह्मा जी ने ये भी वरदान दिया था कि कोई भी ब्राह्मण भी आपको शाप नहीं दे जाए, नहीं सकता, वो मृत्यु का शाप नहीं दे पाएगा। तो यहाँ इस क्षेत्र में बहुत साधु रहा करते थे, कई आश्रम थे यहाँ सारे प्रांत में। तो जितने भी साधु थे, हनुमान जी, बाल हनुमान वहां जाके मस्ती किया करते थे, सब जगह जाके कोई उथल पुथल कर देना, सारे चीजों को इधर उधर कर देना, तो सारे ब्राह्मण और ऋषि मुनि सब हैरान हो गए कि अरे क्या करना चाहिए इस बच्चे को। शिकायत लेके आते थे केशरी के पास, अंजना के पास, वायुदेव ने भी प्रयत्न किया, लेकिन हनुमान मानने के लिए तैयार नहीं। अंततः ब्राह्मणों ने सोचा कि एक ही उपाय है, इस बच्चे को शाप देना चाहिए। और क्या शाप दिया? शाप दिया कि तुम अपनी शक्ति का इतना अभिमान करते हो, तो हम ये शाप देते हैं कि तुम तुम्हारे शक्ति को भूल जाओगे, और केवल जब कोई व्यक्ति आपको तुम्हारी शक्ति का याद दिलाएगा, तब तुम्हारी शक्ति तुमको वापस याद आएगी। तो हनुमान भूल गया कि मेरी इतनी शक्ति है, मुझे इतने सारे आशीर्वाद मिले हैं, शांत हो गए, फिर सारी समस्याएं बंद हो गई। ये सारा जो ये सारी जानकारी है, ये अगस्त्य मुनि ने प्रभु रामचंद्र को दी थी। जब सारा युद्ध हो गया था, सीता देवी को लेकर आए थे वापस श्री राम, और अयोध्या में राज्याभिषेक हो गया था, और अगस्त्य मुनि का संग हुआ था, तो उन्होंने एक बार अगस्त्य मुनि से पूछा कि जब वाली और सुग्रीव के बीच में युद्ध हुआ और वाली ने सुग्रीव को हरा दिया और सुग्रीव के पत्नी का भी अपहरण कर दिया और सुग्रीव डर के मारे यहाँ ऋषिमुख पर्वत पे रह रहे थे, तो उस समय हनुमान ने क्यों नहीं किया है कुछ? जब हनुमान की इतनी शक्ति है तो हनुमान ने कुछ किया क्यों नहीं? हनुमान ने अपने असीमित शक्ति का प्रदर्शन तो युद्ध में कर दिखाया है, तो सुग्रीव की मदद क्यों नहीं की? तब ये सारी कहानी, सब कथा अगस्त्य मुनि ने बताई। और जब सारी वानर सेना, बल्कि अंगद, हनुमान, जाम्बवान और अन्य थोड़े वानरों को जिनको कि सुग्रीव ने भेजा था समुद्र पार करने के लिए और सीता देवी को ढूंढने के लिए, जब जटायु के बड़े भाई संपाति ने उनको बताया कि सीता देवी रावण के घर में है जो कि लंका में है, जो समुद्र पार है, तो उस समय सभी लोग सोच रहे थे कि कैसे समुद्र पार किया जाए। सभी ने अपने अपने योग्यताओं को व्यक्त किया। किसी ने कहा कि मैं 10 योजन कूद के जा सकता हूँ, किसी ने कहा 20, किसी ने 40, 50। अंगद ने कहा मैं 100 के 100 पूरा करके जा सकता हूँ, 100 योजन दूर मैं छलांग मार सकता हूँ, लेकिन एक बार छलांग मार दिया तो पीछे लौटने की शक्ति नहीं होगी मुझे। तो ऐसे सभी लोग कह रहे थे। जाम्बवान कह रहे थे मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं केवल 90 योजन कूद सकता हूँ। जब मैं जवान था तो सारे ब्रह्मांड का मैंने भ्रमण किया था। जब भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हुए थे तो उस समय वामन देव की 3 बार मैंने प्रदक्षिणा की थी, सारे ब्रह्मांड का को 3 बार घूम के आया था मैं एक छलांग में। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो इतना नहीं कर सकता। तो सभी लोग सोच में पड़ गए। और फिर जाम्बवान ने सोचा, अरे हाँ, तो हनुमान है, केवल हनुमान ही ये कर सकता है। और फिर जाम्बवान ने हनुमान को याद दिलाया कि हनुमान देखो ये तुम्हारा इतिहास है, तुम अपनी ही शक्ति को भूल गए हो, तुम्हें ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त हुए हैं और ऐसे ब्राह्मणों द्वारा श्राप भी मिला था क्योंकि तुम बहुत शरारत करते थे, बहुत मस्ती करते थे, तो ये तुम्हारी शक्ति है, अब श्री राम की सेवा के लिए इस शक्ति का प्रयोग करो और छलांग मार के लंका चले जाओ। तो हनुमान जी को पता चला, अरे मुझ में ये शक्ति है, तो हनुमान ने अपने शरीर को बढ़ा दिया और पहाड़ से भी ज्यादा ऊंचे हो गए। उनके जो उनका जो सर है वो बादलों को छू रहा था। और फिर अपनी शक्ति गरजने लगे हनुमान की, अब मैं सारे लंका को तहस नहस करके सीता देवी को लेकर आऊंगा। सारे वानरों का साहस बढ़ गया और फिर हनुमान जी महेंद्र पर्वत से छलांग मारकर सीधे लंका में पहुंचे। तो हनुमान जी के बारे में और कई सुंदर सुंदर कथाएं हैं, कहानियां हैं। वाल्मीकि रामायण में भी वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर ढंग से सब बताया हुआ है। आगे जब हम अभी पंपा सरोवर में जाएंगे तो हम वो कथा सुनेंगे जो पंपा सरोवर में हुई, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ हमें हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखें, उनकी तरह भक्ति हम भी करना सीखें, भगवान के लिए कुछ भी त्यागने के लिए तैयार हों, भगवान के लिए कोई भी सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहें। हनुमान जी ने कभी शिकायत नहीं की सेवा करने के लिए, ये एक गुण है। जब भी उनको भगवान की सेवा के लिए कोई अवसर दिया जाता था कभी शिकायत नहीं करते, अरे ये तो बहुत भारी है, केवल मुझे क्यों कहा जा रहा है, अंगद को क्यों नहीं बोला जा रहा है, सुग्रीव को क्यों नहीं बोला जा रहा है, ये केवल मेरे लिए क्यों सेवा है, मैं भी थोड़ा कुछ आराम करना चाहता हूँ, कभी ऐसे नहीं कहा। तो ये हनुमान जी का भाव है। बैठ के थोड़े समय के लिए हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि हम भी हमारे भक्ति में ऐसे ही सेवा भावना की अनुशीलन करें। जब हनुमान जी से कहा गया था कि क्या आपको निराकार ब्रह्म में लीन होना है, उन्होंने कहा नहीं। कि अगर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा तो फिर भगवान की सेवा कैसे करूंगा, मैं दास और भगवान प्रभु हैं, ये भाव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे ऐसे कोई निराकार विराकार से कोई मतलब नहीं, प्रभु रामचंद्र मेरे नित्य स्वामी हैं और मैं भगवान का नित्य दास हूं। जब हनुमान जी लंका में कूद कर गए थे और अंततः इंद्रजीत ने उनको पकड़ दिया, कई सेनापतियों का वध कर दिया, को हरा दिया हनुमान जी ने, और इंद्रजीत के ब्रह्म पाश को भी वो आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी के शब्द को वो तोड़ना नहीं चाहते थे। इंद्रजीत को वरदान मिला था ब्रह्मा जी से, ये ब्रह्म पाश मिला था कि ये अस्त्र जो है किसी को बांध के रख सकता है। हनुमान चाहते थे तो आसानी से निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा फिर ब्रह्मा जी के लिए अच्छा नहीं होगा, ब्रह्मा जी की बदनामी होगी, फिर अपने आप जानबूझकर बंद गए। और वो देखना भी चाहते थे कि चलो रावण को जाके देखते हैं। तो इंद्रजीत ने हनुमान जी को बांध कर रावण के सामने लाए। रावण को बड़ा गुस्सा आया था और रावण को सुनकर देखने के लिए कौन है ये बानर, नहस नहस मैंने राज में कर दिया है, किला बांधा है और इतना कुछ कर दिया। तो अंततः रावण ने पूछा, हे तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया, उन्होंने कहा तुम कौशलेंद्र से दासो हम, दास हम, मैं दास हूँ कौशलेंद्रस्य, कौशल राजा राम, रामस्य उनका मैं दास हूँ। और राम कैसे है, अक्लिष्ट कर्मणा, जो अपने कर्मों में कभी थकते नहीं है, ऐसे श्री राम का मैं दास हूँ, ये मेरी पहचान है। अब आगे बोलिए। तो फिर रावण को पता नहीं चला क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। अंततः रावण ने सोचा इस भी तो बंदर है, बंदर को क्या दंड दे सकते हैं, चलो इसका पूंछ जला दो। और फिर हनुमान जी ने क्या किया, सारे लंका को ही जला डाला। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि क्रोध ये भी भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके लिए उदाहरण हनुमान जी का दिया जाता है कि कैसे हनुमान जी ने क्रोध का इस्तेमाल किया रावण के विरुद्ध। परंतु जब क्रोध हमारे अहंकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो अच्छा नहीं है। अरे इसने मेरे खिलाफ ऐसे बात की, अच्छा अभी मैं सिखाता हूँ उसको, सबक सिखाता हूँ, ये इस प्रकार का गुस्सा अच्छा नहीं है। लेकिन भगवान की सेवा के लिए आवश्यकता पड़ने पर हम कभी कभी गुस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी सद्बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो हनुमान जी ने दिखाया है कि कैसे भगवान की सेवा की जा सकती है, भक्ति क्या चीज है, ये हनुमान जी ने दिखाया है। इस स्थान को अंजनाद्री कहते हैं, अद्री मतलब पर्वत, अंजना मतलब हनुमान जी की माता का नाम है। सारे किष्किंधा का दर्शन कर सकते हैं। देखिए यह तुंगभद्रा नदी है, ये इसका पहले नाम था पंपा नदी, वैसे पहले बहुत ज्यादा पानी था इसमें, अभी बंद वगैरह बन गया है तो पानी यहाँ थोड़ा कम हो गया है, लेकिन बहुत जोरों से पानी यहाँ बहता था पहले, और इसीलिए हम्पी के राजाओं ने इसी स्थान को अपनी राजधानी बनाई। एक ओर से तुंगभद्रा है और दूसरी ओर से सब पर्वत हैं। ये पर्वत भी काफी छोटे हो गए हैं पहले के हिसाब से, त्रेता युग के हिसाब से। तो देखिए यह ऐसे लगता है कि मानो इन पत्थरों को किसी ने बिल्कुल सजा के रखा हुआ है। कई जगह तो ऐसे बैलेंस होके पत्थर है कि हम सोचते हैं कि आश्चर्यचकित हो जाती है कि पत्थर ऐसे है कैसे, खड़ा कैसे है, ऐसे लगता है बिल्कुल उठाकर ठीक एक पत्थर को किसी ने रख दिया हो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। हाँ, वैज्ञानिक तो कहते हैं कि हवा और पानी की वजह से ये सारे पत्थर ऐसे हो गए हैं। ठीक है, उनको कहने दीजिए। भक्त, कई भक्त कहते हैं कि वास्तव में जब राम सेतु बनाने का समय आया था लंका, यहाँ से लंका तक, तो उस समय सारे पृथ्वी से वानरों ने पत्थर आदि एकत्र किए थे, ये उनका भंडार था, यहाँ सब आके रखते थे। और फिर जब पुल बन गया तो उन्होंने सोचा चलो अब तो आवश्यकता नहीं है, तो उनको यही रहने दो, सब सारे पत्थर यहीं पर पड़े हैं सब। देखिए, कौन ऐसे कह सकता है कि ये केवल वायु और पानी की वजह से ऐसे सब हुए होंगे। थोड़े हद तक हम समझ सकते हैं कि थोड़े थोड़े पत्थर ऐसे हैं कि बस ऐसे कोने में, छोटे से भाग में ऐसे बैलेंस्ड हैं। तो ये सारा क्षेत्र है, ये किष्किंधा क्षेत्र है। और आगे चल के भी हम कल हम्पी जाएंगे, जो तुंगभद्रा के उस पार है। ये तुंगभद्रा के उत्तरी भाग में है और ये हम्पी शहर दक्षिणी भाग में है। तो कल हम वहां जाएंगे और इस समय हम नीचे उतर के पंपा सरोवर जाएंगे। पंपा सरोवर, ऋषिमुख पर्वत, ये सब रामायण में आता है, इसका वर्णन है। तो वहां कौन सी लीलाएं हुई वहां जाके सुनते हैं। हरे कृष्णा। पवन सुत हनुमान की जय, श्री बजरंग बली की जय, गौर प्रेमानंदे। आप में से जो थोड़ा बहुत दान देना चाहते हैं, खुद अपने में जितना आप चाहते हैं उतना आप रख सकते हैं स्वेच्छा से। हरे कृष्णा। दोनों बालाजी भी हनुमान जी को भी बोलते हैं, ये नाम भी है, दोनों नाम है हनुमान जी। बल्कि वृंदावन में हनुमान जी को बालाजी कहते हैं, बालाजी कहते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में बालाजी मतलब वेंकटेश्वर। हरे कृष्णा। चलिए, हाँ, ऐसे माना जाता है कि शिव जी के अंश भी हैं वो। वायु जी ने शिव जी के शक्ति को स्थानांतरित किया, इसलिए वायु भी, हनुमान जी वायु पुत्र भी कहलाते हैं और शिव जी के पुत्र भी कहलाते हैं दोनों। ठीक है, अभी हनुमान जी का स्मरण करते करते जाइए, अभी बिल्कुल इधर उधर की बातें मत कीजिए। ठीक है, जाते जाते केवल किष्किंधा क्षेत्र का दर्शन करते हुए, हनुमान जी की लीलाओं का स्मरण करते हुए जाइए और हनुमान जी की कृपा याचना करते हुए जाइए, कीर्तन करते हुए। ठीक है, तो कीर्तन पार्टी अपना कीर्तन शुरू करें और नीचे हम चले जाएंगे। हरे कृष्णा। एक मिनट, माइक। हरे कृष्णा। वहां आप दूर देखिए, जहां मैं इशारा कर रहा हूं, वहां दूर, वहां हम्पी क्षेत्र के थोड़े पुराने मंदिर आपको दिखाई पड़ेंगे, वो है विट्ठल मंदिर। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जो कृष्ण देव राय ने बनाना शुरू किया था लेकिन वो समाप्त नहीं कर पाए। और उस विट्ठल मंदिर में कहा जाता है कि जितने भी खंभे हैं वो सप्त स्वर बनाते हैं, उनको टक 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 आवाज करने से अलग अलग स्वर आते हैं अलग अलग खंभों से, लेकिन किसी को ये पता नहीं चला है कि ये स्वर आने का कारण क्या है, किस प्रकार का डिजाइन उन्होंने किया है कि ऐसे अलग अलग स्वर अलग अलग खंभों से आते हैं।
वेतन करेंगे आप? नहीं, इसको छोड़ो। हाँ, माता जी बुला रहे हैं।
स्टॉप ये रे
मतलब नहीं है
हां
स्टॉप के
स्टॉप के पॉज कर लो पॉज कर लो।